नैनीताल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सभा में पानी जहाज संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक और राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना और संचालन विधेयक किया गया पेश। सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाई है, उप प्रधान एवं अर्थमंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल का कथन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को 54 लाख रूपये जमानत पर रिहा करने का चितवन जिला अदालत का आदेश। और पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कथन। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता एवं नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों का विरोध किया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि सरकार ने संसद के सत्र के दौरान षड्यंत्रपूर्ण तरीके से एक के बाद एक अध्यादेश लाए हैं। अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि सरकार प्रगति के तथ्यों के बजाय मिथ्या आंकड़ों में लिप्त है। उन्होंने कहा कि संसद में रिपोर्ट कार्ड और तथ्यों के बजाय मिथ्या कल्पनाएं और आत्म प्रशंसा सुनाई दे रही है। इसी तरह उप प्रधान एवं अर्थमंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल ने आज प्रतिनिधि सभा की बैठक में बोलते हुए दावा किया कि सरकार विकास निर्माण और सामाजिक कार्यक्रमों को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए कार्ययोजना के साथ काम कर रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार ने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली के लक्ष्य को पूरा करने और देश के हर क्षेत्र में बदलाव की अनुभूति देने के लिए काम को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ने की बात कही। अर्थमंत्री पौडेल ने कहा कि सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाई है और वर्तमान में विकास निर्माण के कामों में तेजी आई है। इससे राजस्व संग्रह में वृद्धि होने के साथ साथ आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने सरलाही में हुए अंतर्जातीय विवाह से जुड़े मुद्दों और चिंताओं पर गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाई। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक के आकस्मिक और शून्य समय के दौरान सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री लेखक ने बताया कि संविधान द्वारा सुनिश्चित छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ अधिकार तथा व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में सरकार सक्रिय है। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि वे किसी भी प्रकार की जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। गृहमंत्री लेखक ने स्पष्ट किया कि अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त की गई है और इसके क्रियान्वयन के लिए गृह मंत्रालय प्रयासरत है। गृहमंत्री लेखक ने यह भी बताया कि पीड़ित से जुड़े सभी तथ्य सार्वजनिक हो चुके हैं और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सदन को सूचित किया कि पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय प्रतिबद्ध है। आज की प्रतिनिधि सभा की बैठक में बोलते हुए स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि एचपीवी टीकाकरण अभियान से किसी भी किशोरी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए और इसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। मंत्री पौडेल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कैंसर की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान करना है। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में नहीं रहने देने की रणनीति अपनाई गई है। सरकार का लक्ष्य सन 2030 तक 10 से 14 वर्ष की आयु के 90% बच्चों को टीका लगाना, 30 वर्ष से अधिक आयु के 90% लोगों को सर्वाइकल कैंसर की जांच कराना और सर्वाइकल कैंसर की पहचान होने वाले 90% लोगों का उपचार करना है। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने सरलाही बरहथवा 10 में हुई जातीय भेदभाव की घटना के संबंध में निष्पक्ष जांच करने, सच्चाई सामने लाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सभा के आकस्मिक और शून्य समय में अधिकांश सांसदों ने सरलाही के बरहथवा में सत्येन्द्र कुमार रामचमार और नेहा रौनियार के बीच अंतर्जातीय विवाह होने और विवाह पंजीकरण भी हो चुकने के बावजूद उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराकर उन्हें अलग करने की कोशिश की जा रही है, ये कहते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। सांसदों ने सरलाही की घटना पर यह आरोप भी लगाया कि इससे 60 लाख दलित जनता को दबाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में पानी जहाज संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक 2081 और राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना और संचालन विधेयक 2081 पेश किया गया। इससे पूर्व बैठक में सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक मार्ग 27 गति रविवार 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने इस वर्ष के भीतर आईटी पार्क स्थापित करने की घोषणा योजना की। कंप्यूटर एसोसिएशन महासंघ नेपाल कैन महासंघ द्वारा आयोजित 30वें कैन इन्फोटेक 2025 के उद्घाटन समारोह में संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि डिजिटल फ्रेमवर्क बनाने के लिए पर्याप्त सूचना प्रविधि के पूर्वाधार को तैयार करना आवश्यक है। संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि सूचना प्रविधि के युग में पहुंचने के बावजूद नेपाल में एक भी आईटी पार्क नहीं होना तकनीकी रूप से पिछड़ेपन को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी नीति, एआई नीति सहित भौतिक और कानूनी प्रावधान लाने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। इसके अलावा संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि एआई नीति लाने के मामले में मंत्रालय संबंधित पक्षों के साथ चर्चा कर रहा है। साथ ही इस वर्ष के भीतर 753 पालिकाओं में 4G घर घर तक पहुंचाने और काठमांडू में 5G की शुरूआत करने के लिए मंत्रालय सक्रिय है, ये बात बताया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14*15 ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति एवं पूर्व गृहमंत्री रवि लामिछाने को 54 लाख रुपए जमानत पर रिहा करने का चितवन जिला अदालत ने आदेश दिया है। चितवन के सहारा सहकारी ठगी मामले में लामिछाने को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। ये जानकारी पार्टी के सांसद हरि ढकाल ने दी। काठमांडू कमल पोखरी स्थित शानदार मोमो की दुकान में आज सुबह गैस सिलेंडर विस्फोट होने से 11 लोग घायल हो गए, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रवक्ता अपील बोहरा के अनुसार सिलेंडर विस्फोट होने से 11 लोग घायल हो गए। घायल सभी को कृतिपुल स्थित बर्न अस्पताल ले जाया गया। घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों को कोई शुल्क नहीं देना होगा और इससे अमेरिका को हर साल लाखों डॉलर की बचत होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव के बाद अमेरिकी जहाजों को पनामा नहर से बिना किसी शुल्क के गुजरने की अनुमति मिली है। 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर मध्य अमेरिका के बीचों बीच बहती है और ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है। हर साल लगभग 14,000 जहाज इस नहर को एक शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस नहर के बनने से पहले उन जहाजों को दक्षिण अमेरिका से होते हुए लंबा और महंगा सफर तय करना पड़ता था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सभा में पानी जहाज संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक और राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना और संचालन विधेयक किया गया पेश। सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाई है, उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल का कथन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को 54 लाख रूपये जमानत पर रिहा करने का चितवन जिला अदालत का आदेश और पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।